to Sai.
Spend the day with Sai. From 6 a.m. to 9:30 p.m.
on Radio Sai Thursday Live.
Radio Sai Thursday Live.
Dear listeners, loving Sai Ram and greetings from Prashanti Nilayam, the abode of highest peace. You are tuned to Asia's stream of Radio Sai Global Harmony, bringing you the message of Bhagawan Sri Satya Sai Baba. I am Raghu from Team Radio Sai and a warm welcome for today's Thursday Live, and this is the segment Seva and Sadhana. Today is 29th of September and it's a pleasant and fine Thursday here in the ashram. Well, next week is going to be the week of festivities as the celebration of Dasara is going to start. The 3rd of October will start the Sri Satya Sai Gram Seva, the holy project in which Swami's students from the institute will go to the different villages around Parthi distributing Swami's prasadam in the form of food packets and clothes. And also there will be the Veda Purusha Saptah Jnana Yajna. And the Dasara celebration will complete on 11th of October with the Purnahuti of the Yajna. So, dear listeners, you can catch the programs of the Dasara festival live from in our website, radiosai.org. In fact, the first day and last day of the Yajna will be broadcast live in the morning. And in the evenings, there will be cultural program, which is called the Vidwan Mahasabha, where there will be also a few speakers who will speak on different spiritual topics. So all this will be covered live and you can watch them in our website, radiosai.org. So as I said, dear listeners, this is a segment Seva and Sadhana. So today I'll be playing for you a conversation with Mr. Pradeep Bhandari from Uttarakhand, the North Indian state of Uttarakhand. And in this conversation, he'll be talking to us about a unique service activity in which Sai devotees are involved in a village called Shankarpuri, which is nearby the Roorkee district of Uttarakhand, from where Mr. Pradeep Bhandari hails. And let's listen to this conversation. In conversation with Mr. Pradeep was Radio Sai's Karuna Munshi. And dear listeners, this conversation is in Indian language, Hindi. But don't worry, for the benefit of listeners who don't understand Hindi, I'll be summarizing what Mr. Pradeep has told after the conversation. So let's listen to this beautiful conversation.
Sai Ram, aaj hamare saath Shri Pradeep Bhandari ji jude hue hain, jo ki Roorkee, Uttarakhand se aaye hain. Roorkee mein Pradeep ji ka distribution ka business hai aur ye aur inka parivar bahut nazdeeki se jude hue hain Shri Satya Sai Seva Center ke saath, jo ki Roorkee mein bahut anek vibhin prakar ki seva activities karte hain. Sai Ram Pradeep ji.
Sai Ram.
Aapka Radio Sai mein bahut bahut swagat hai.
Sai Ram, Sai Ram.
Aap hame bata sakte hain aur hamare listeners ko kuch khas seva activities jo aap log karte hain wahan pe Roorkee mein Shri Satya Sai Seva Center mein, jisse samaj mein actually koi difference impact hota hai.
सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि भगवान बाबा की असीम दया से हमारे पास एक सेंटर है, बिल्कुल Roorkee के जो सेंटर प्लेस है वहां पे है, और बहुत इजीली सब लोग वहां पहुंच जाते हैं. आसपास से छोटा टाउन है, सभी जगह समितिज में बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं. वैसे ही सारे काम हमारे यहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन एक जो हमें लगता है कि बहुत फ्रूटफुल हमारा प्रोग्राम है
जी,
वो है सिलाई कढ़ाई का एक निःशुल्क प्रशिक्षण सेंटर हम चलाते हैं, जो अडॉप्ट हमने गांव किया हुआ है शंकरपुरी के नाम से.
अच्छा.
पिछले लगभग 8 साल से हम वहां पर सिलाई कढ़ाई का सेंटर चला रहे हैं, और बहुत सारे लेडीज लड़कियां गांव की इससे फायदा उठा चुकी हैं और बुटीक्स में काम कर रही हैं.
अरे वाह.
उनका अर्निंग का एक सोर्स बन गया है
जी.
ये भगवान की सब देन है, सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है. और उस गांव के अंदर शायद ही कोई घर बचा होगा जिसमें वो लेडीज ने ट्रेनिंग नहीं ली हमारे सेंटर में आकर.
तो आप क्या सिखाते हैं उन्हें? एक तो सिलाई, लेडीज के कपड़े सिलना.
हाँ जी, कटिंग, सिलाई, कढ़ाई,
एम्ब्रॉयडरी भी.
एम्ब्रॉयडरी भी.
उस प्रशिक्षण देने के लिए आपको तो ट्रेन्ड ट्रेनर्स चाहिए.
भगवान की ये भी असीम कृपा है कि हमें एक बहुत अच्छी ट्रेनर मिली हुई है जो उनको ट्रेनिंग देती है
जी.
वो हैंडीकैप्ड है बेचारी, लेकिन बहुत डिवोटेड है. अपने काम के प्रति बहुत अच्छे से सिखाती हैं वो, और लगता नहीं कि हमारी साईं की गोटी नहीं है वो। वो भी एक गांव से ही आती हैं, लेकिन वो साईं के रंग में रंग चुकी हैं।
वो भी निशुल्क अपनी सेवा देती हैं?
नहीं, वो पेड है।
अच्छा, आई सी। तो आपकी जो ट्रेनर हैं वो इन गांव की लड़कियों को, शंकरपुरी की लड़कियों को सिखाती हैं कटिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, ये सब कुछ सिखाती हैं। उसके बाद ये लोग, आपने जैसे कहा काफी लड़कियां बुटीक्स में काम करती हैं, और बाकी लोग खुद एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं।
घर में भी उनको सेविंग हो जाता है, अपने से खुद अपने सूट सिल लेते हैं, अपने परिवार वालों के स्टिचिंग जो है वो खुद कर लेते हैं वो। और फिर जब उनकी शादी होती है, दूसरे घर में जाती हैं, तो वो एक अलग ही उनका स्टेटस होता है।
वो तो बहुत अच्छी बात
उनको
है।
उनको हम हर छह छह महीने के कोर्स करते हैं उनके लिए।
अच्छा।
और हर छह महीने के बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको हम चूज करते हैं, जो बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी तरह से सीखती हैं, तो उनको एक एक सिलाई मशीन दी जाती है। और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, एक बैच में लगभग 25 के करीब लड़कियों को लेते हैं।
अच्छा। और कितनी देर तक चलता है एक कोर्स?
छह महीने।
पूरा छह महीने रोज आना पड़ता है?
रोज।
अरे वाह, बड़ा इंटेंस होगा।
रोज आना पड़ता है। और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारे कन्वीनर साहब हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत डिवोशन के साथ वो ये सब कर रहे हैं पिछले 8 साल से।
और श्री अरोरा जी?
जी हाँ, श्री एम आर अरोरा जी।
तो फिर छह महीने डेली ट्रेनिंग देने के बाद तो उन्हें काफी अच्छी सिलाई आ जाती होगी,
एक्सपर्ट हो जाती है ऑलमोस्ट, और बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है उन लोगों में। और इसके साथ साथ देखिए, हमारा जो मोटिव है, साईं का नाम गांव में एंटर करते ही बच्चा बच्चा बोलता है साईं राम वाले आ गए, इस तरह से उनका
ये शंकरपुरी कितना दूर है?
4 किलोमीटर।
ओ, बिल्कुल पास में।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बात मैं और बताऊं कि शंकरपुरी में शायद कोई घर बचा जिसमें वो ये वाला ट्रेनिंग नहीं पहुंची है। अब हमने सामने एक दूसरा गांव है ब्रह्मपुर के नाम से।
अच्छा।
अब तीसरा बैच वहां चल रहा है, 1 साल से हमने वहां शुरू किया है।
अभी तक कितने बैचेस को पढ़ाया?
16 बैच हो चुके हैं और 17वां बैच स्टार्ट हुआ है।
सो हर बैच में 25 लड़कियां और 16 बैच। ओहो, दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल।
जी जी। और जब हम प्रोग्राम करते हैं 6 महीने बाद उनको सर्टिफिकेट देते हैं समिति की तरफ से।
हाँ जी,
सर्टिफिकेट देते हैं। और जितनी भी पार्टिसिपेंट्स होती हैं, जितनी सीखती हैं, उनको सबको एक एक सूट का कपड़ा दिया जाता है और स्टिचिंग का मटेरियल दिया जाता है।
अच्छा।
और गांव के बच्चे, जो हमारा बाल विकास भी चलता है शंकरपुरी में, वो कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। तो गांव के अंदर भगवान की दया से बहुत अवेयरनेस है, साई का नाम हो गया। और जून सेवा में जब होती है हमारी उत्तराखंड और यूपी की, तो गांव से भी कुछ बच्चे आने शुरू हो गए हैं अब
सेवा में।
हाँ, पिछले 3 साल से आ रहे हैं।
आपने तो 400 परिवारों में इतना परिवर्तन लाया है इस सेवा से, तो कहीं तो उसका इफेक्ट दिखेगा ही ना, उसका असर भगवान के प्यार का।
बहुत बहुत कृपा है साईनाथ महाराज की, बहुत दया है। और ये सब करवाने वाले वही हैं, हम तो सिर्फ एक नमित हैं।
तो रोज ट्रेनिंग देने के लिए तो फिर रोज सेंटर खुलना है, सफाई होनी है, आरती होनी है, वो सब।
एक मंदिर है गांव के एंट्रेंस पे ही, उस मंदिर के ऊपर हमने 2 कमरे बने हुए थे, उसको ठीक ठाक कर दिया है, उसमें फैन वगैरह लगा दिए, अच्छा कर दिया उसको, वहां पर ये सारा प्रोग्राम होता है।
अच्छा। हाँ जी। तो शंकरपुरी गांव में होता है?
शंकरपुरी गांव के,
ताकि लेडीज को ज्यादा दूर भी ना आना पड़े।
अगर हम शहर में रखेंगे कोई आएगा नहीं।
अच्छा अच्छा, मैं समझी चाहिए सत्य साई सेवा सेंटर रुड़की में होता
नहीं,
है।
नहीं नहीं, ये गांव के अंदर ही होता।
अच्छा।
है। और ब्रह्मपुर में जो अब स्टार्ट किया है दोबारा से, वहां भी उनका एक बारात घर है।
अच्छा।
उसके अंदर हमने हॉल ले लिया उनसे।
अच्छा।
और सब अपना सामान वहां रख देते हैं, वहीं होता है उनके गांव के अंदर ही, तभी वो लोग आते हैं, तो अदरवाइज गांव वाले लेडीज को बाहर भेजते हैं।
तो आप सेवा उन्हीं तक, उनके डोर स्टेप तक लेके जाते हैं?
जी जी जी। उसके अलावा नारायण सेवा भी होती है वहाँ, बाकी मेडिकल कैंप भी लगते हैं उसी गांव में, ये सब प्रोग्राम चलते हैं वहाँ पे।
तो जब शुरू में ये स्टार्ट होता है, गांव के लोगों की क्या रिएक्शन रहती है? उन्हें लगता नहीं कि कुछ तो इसके पीछे राज होगा, फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं?
हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा सा ये था, लोगों को इस चीज का पता नहीं था कि ये लोग कौन है।
अच्छा।
आमतौर से यही लोगों की धारणा होती है, ये लोग शायद कुछ राजनीति वाले हैं या वोट के चक्कर में आए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उनको पता है कि ये लोग कौन हैं, इनका मोटिव क्या है।
अच्छा।
इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य है, ये निस्वार्थी सेवा करने वाले हैं सब लोग, तो बहुत कोऑपरेट करते हैं सब लोग। एक प्रोग्राम हमने और रखा, मुझे याद आ गया, हमने एक कॉम्पिटिशन रखा गांव वालों के लिए, ऐसे सफाई का चल रहा है अभियान।
हाँ।
मोदी जी भी हमारे बहुत इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं,
स्वच्छ भारत,
उन्हीं का दिया हुआ है प्रोग्राम। हमने अनाउंस कर दिया पूरे गांव में कि हम हर हफ्ते आएंगे, आपको चेक करेंगे, आप अपने घर क्लीन करिए, नालियां, घर और पूरी बस्ती को साफ करिए अपने घरों को, फिर हम देखेंगे आके। फिर हमने उनको प्राइज दिया।
अच्छा।
जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उसको हमने उनको प्राइज दिया। आप विश्वास करिए कि इतना साफ हो गया गांव कि शहर भी क्या होते होंगे।
ये तो बहुत ही अच्छा अभियान है।
लोगों में भावना जगी सफाई के प्रति, उनका रुझान हुआ और उनको भी बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम करके।
बहुत ही अच्छा कैंपेन है, उससे सबको फायदा पहुंचेगा। सफाई से जब उनको खुद को लगेगा साफ सुथरे तरीके से रहने से कितने बेनिफिट्स हैं, कितने फायदे हैं, शायद वो फिर दोबारा भी वही करें।
जी जी जी, जी। इसी गांव में हम मंथली नारायण सेवा करते हैं, जिसमें 250-300 बच्चे गांव के करीब आ जाते हैं और फायदा उठाते हैं। उस नारायण सेवा से पहले भजन करते हैं हम आधे घंटे का, और उसमें जो लड़कियां सिलाई कढ़ाई सीखती हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो कुल मिला के भगवान की दया से एक साईमय वातावरण बन जाता है वहां पर। और 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त को हम वहां कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। सब उसके अनाउंसर गांव के बच्चे ही होते हैं, सब प्रोग्राम वही तैयार करते हैं, वही ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और गांव वाले उनके पेरेंट्स भी उसको देखने के लिए आते हैं।
वेरी नाइस सेंस ऑफ कम्युनिटी, सब लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं स्वामी के नाम से, तो बहुत ही अच्छा लगता होगा।
जी जी जी, बहुत अच्छा लगता है। आपने जैसे बताया शुरू में तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आस्ता आस्ता जैसे उनको पता लगता है कि ये लोग कौन है, इनका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे कोई मोटिव इनका और नहीं है, सिर्फ साईं का नाम है इनके साथ,
कोई वोट नहीं चाहिए, कोई कन्वर्शन नहीं इन्वॉल्व है, किसी को किसी का धर्म नहीं बदलना है।
जी जी,
हम तो ऐसा कुछ नहीं कभी करते।
हाँ जी हाँ जी, हम डेंटल कैंप भी लगाते हैं वहां पर कभी कभी, 3 महीने बाद या 6 महीने में एक बार। और इसके अलावा वाइब्रो होम्योपैथिक का भी कैंप रेगुलरली लगता है, लगभग हर महीने ही वहां पर, और उससे भी बहुत फायदा उठाया गांव वालों ने, गांव के लोगों ने। और इस तरह से जो भी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट वहां आते हैं, कभी विजिट करते हैं, तो उनको भी हम ले जाते हैं वहां पर। बहुत अच्छा लगता है सबको जानकर, उनको लगता है गांव वालों की हमारे घर, गांव के अंदर जैसे हमारे घर में ही कोई बाहर से अतिथि आया है,
वो अपनेपन का फीलिंग आती है बहुत। हाँ,
और जब हम प्रोग्राम करते हैं ये सिलाई कढ़ाई, 6 महीने के बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सिलाई मशीनें देते हैं, तो हम सिटी से भी लोगों को बुलाते हैं, जैसे कभी SDM को बुला लेते हैं या और जो अच्छे लोग हैं समाज के
जी,
उनको बुलाते हैं, तो गांव वालों को लगता है कि हम तो बिल्कुल जैसे शहर के अंदर ही बैठे हुए हैं और इनके साथ हमारा और इनका लेवल एक ही है।
हाँ।
उनको ये अपनापन का एहसास होता है।
हाँ।
भगवान यही बोलते हैं कि लव ऑल सर्व ऑल, यही मैसेज वहां जाता है इसके पीछे,
और उनको उसका अनुभव होता है कि सच में कोई हमें हाँ। बिल्कुल निस्वार्थ प्यार करता है।
जी जी जी
हाँ।
और वाकई में बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों को लगता नहीं कि हम दूसरी कम्युनिटी के हैं या हम नीचे दर्जे के लोग हैं, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता उनको, इक्वली बराबर कई अब समझते हैं सब।
अब उसे स्वामी कर सकते थे, स्वामी ने ही केवल हमें ये सब सिखाया है,
यही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है भगवान की दया से।
बड़ा उत्साह है ये जो सत्य साई सेंटर सेवा सेंटर है रुड़की का, जिससे भी मैंने बात की सब लोग बड़े खुश हैं कि नहीं हमारा स्वामी, स्वामी ने इतना अच्छा मंदिर दिया है, वहां रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, भजन वगैरह भी होते हैं।
मॉर्निंग में प्रार्थना होती है, आधे घंटे का आरती होता है, शाम को भी आधे घंटे का भजन रोज होता है, और वीकली भजन हफ्ते में 2 दिन रखते हैं, वेडनेसडे एंड थर्सडे इवनिंग में, तो उसमें काफी लोग आते हैं, क्योंकि सेंटर प्लेस पे है इसलिए आने जाने वाले लोग कोई भी वहां से जो निकलता है बिना शीश झुकाए, बिना माथा झुकाए वहां से पास नहीं होता, ऐसी भगवान की दया है।
ये तो बहुत खुशी की बात है प्रदीप भंडारी जी, ये सब जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अंत में मैं 2-3 लाइनें शेयर करना चाहूंगा।
प्लीज।
भगवान ने प्रेरणा दी है कि हम सबका हमेशा इसी को चीज को महसूस करते रहे और दोहराते रहे अपने मनों में, आने वाली सांस बोले साई राम राम, जाने वाली सांस बोले साई राम राम, आने वाली सांस बोले साई राम राम, जाने वाली सांस बोले साई राम राम, मन में हमारे तेरी मूरत हो, सांवले सलोने तेरी सूरत हो, मन तेरा नाम जपे तन तेरा काम, मन तेरा नाम जपे तन तेरा काम, आने वाली सांस बोले साई राम राम, जाने वाली सांस बोले साई राम राम, जाने वाली सांस बोले साई राम राम। ओम श्री साई राम।
ओम श्री साई राम।
Tuning to Sai.
Spend the day with Sai.
From 6 a.m. to 9:30 p.m.
on Radio Sai Thursday Live.
Radio Sai Thursday Live.
Stay tuned.
Sairam, dear listeners, and once again a warm welcome for today's Thursday Live. I am Raghu from Team Radio Sai, and this is the segment Seva and Sadhana. The time right now in our studios is 12:05, and it's a pleasant day here at the ashram. Today is 29th of September. So, for the couple of minutes, for the past 10 minutes or so, you heard an interview with Mr. Pradeep Bhandari, and in conversation with him was Radio Sai's Karuna Munshi, and he spoke to us in Hindi. And for the benefit of listeners who don't understand Hindi, I would like to summarize what Mr. Pradeep said. Well, Mr. Pradeep is from Roorkee in Uttarakhand, North Indian state of Uttarakhand. He is a businessman there, and he is very active in the Sai Center in Roorkee. So in the conversation, Mr. Pradeep shared with us a beautiful seva activity in which he and other members of Sai organization are involved in. And they are conducting this seva activity in a nearby village called Shankarpuri. So this seva activity is training the villagers on tailoring and embroidery. And this activity is free of cost. They have got a course of training which is for about 6 months. And they have got one professional tailor whom they have hired, and they teach tailoring and embroidery for the villagers, and it's a 6 months course, and it's happening from the past 8 years. So in the past 8 years, they have completed 16 batches. Each batch will have about 25 members, and that way they have trained about 400 villagers on tailoring and embroidery. Well, this has brought a lot of transformation among the villagers. In fact, after learning tailoring and embroidery, many of the villagers have become self-sustained. They have taken this as their profession and earning their living, livelihood. In fact, Mr. Pradeep said that almost every household of this village has been benefited because of this training center. And the Sai and Mr. Pradeep also told a few other activities which they conduct in these villages, that is the Narayan Seva, then Balvikas classes and medical camps, dental camps and vibro homeopathy camps also. So these Sai devotees go to this village almost every day. In fact, they have to go because they have to run the training center, and this has caused a lot of transformation in the village, Shankarpuri. So now whenever these Sai Sevaks go there, the children greet them saying Sai Ram, Sai Ram, and the villagers conduct bhajans every day. And these Sai Sevaks also have started one new activity. You can call it like a competition. Inspired by our India's Prime Minister, Mr. Shri Narendra Modi, on Modi's program of Swachh Bharat, the Sai devotees have started a competition of keeping the houses clean. So every week these volunteers go to each and every house of the village and evaluate and check the house, and at the end of the month the best 3 houses will be given a prize. Apart from this, they also conduct a lot of cultural programs on Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti, etc. Then, as Mr. Pradeep said, that this tailoring course is for 6 months. So, at the end of the 6 months, the best student will get a sewing machine and also a and all other all students, all members will get a certificate. So this was the wonderful SIVA activity which Mr. Pradeep Bhandari shared with us in the conversation that you heard, which was in Hindi, and one of the many wonderful service activity in which Bhagwan's devotees are involved in, being inspired by Bhagwan Baba himself, who has always told, who has always given a lot of importance to service to society. In fact, Swami has not only told about service, but also has shown it in action by starting many service projects in the field of medicine, in the field of education, drinking water projects, etc. So in this segment, Seva and Sadhana, we try to capture these service activities done by Sai devotees all over the world. So listeners, please send us your feedback about this beautiful service activity. You can mail us to listener@radiosai.org. So after listening to this service activity, let's listen to one more account of Seva.
Across every state of India, across 125 countries, across political, religious, racial, geographic and linguistic divide, across social and cultural barriers, what compels millions to step forward and reach out to complete strangers in need? Since 1940, when the 14-year-old Satya declared his divine mission, a salient revolution has emerged from a heart that preaches only one language, that of unconditional love. Through his massive service projects, Bhagwan Baba has redefined spirituality as social activism, responsible charity, and conscientious citizenship. Be it a service project in remote Andhra Pradesh or at a slum in Zimbabwe, volunteers from all backgrounds are transforming our world by serving in the name of Sai.
Dear listeners, welcome to the Radio Sai series, Serving in the Name of Sai. In this program, we bring you stories of the service activities by Sai volunteers across India and the world. Today's segment features the moving story of how, by the grace of Bhagwan Baba, the Sai devotees in Puerto Rico and Venezuela planned and executed a selfless service initiative for the devastated people of Haiti and Cuba in September 2008.
The Caribbean region consists of nearly 7,000 islands, commonly known as the West Indies. Some of the notable islands in this region are Puerto Rico, Haiti, the Dominican Republic, and Cuba. Haiti and the Dominican Republic actually share one common island. The eastern two-thirds of this is occupied by the Dominican Republic, while the western part belongs to Haiti. And to the east of Dominican Republic is Puerto Rico.
And in all these regions, the Sai consciousness is growing amazingly fast. The Sai movement in Puerto Rico has a history of over 3 decades, even though the formal Satya Sai organization of Puerto Rico came into being only in 1987. And since then, the committed group of Sai devotees there has engaged in a variety of social welfare and spiritual activities, often reaching out to people outside of their borders. And in all these sacred endeavors, they have experienced the unseen hand of Sai. The current episode is one such amazing tale.
Every year, from August through October, November,
there are very strong hurricanes in the Caribbean Sea, which results in a huge loss of life and property. Normally, the government arranges for the relief material after the hurricane struck. But in 2008, the service coordinator of the SAI organization in Puerto Rico decided to be prepared in advance with help and relief material in case the hurricane struck that year as well. He was particularly concerned about the poor people, especially those living in Haiti, who are usually the hardest hit. Among all the Latin American countries, Haiti has the lowest standard of living. All the more the reason why there was special concern for people living there.
So, when the devotees in Puerto Rico came to know of the plan to be prepared in advance for the hurricanes, they chipped in with all their resources. They started collecting clothes and food items with the idea to take them directly to Haiti. They had never done this service before, but they contacted the devotees at the SAI Center in Port-au-Prince, the capital of Haiti, and asked them if they would receive the articles and help to distribute them to the needy.
Even though the response was positive, diplomatic regulations had to be met. A detailed list of everything arriving would have to be given to customs with a letter showing that it was a donation. The items were collected from all the centers in Puerto Rico and packed in boxes. An inventory was prepared, and the idea was to take a ferry across Mayagüez, Puerto Rico, to Santo Domingo, Dominican Republic. From there, the team of SAI volunteers was to travel overland to Haiti and deliver the aid to the SAI center in Port-au-Prince.
Everything was packed into a van belonging to one of the devotees, and passage was booked on the ferry which made the crossing to Santo Domingo in 8 hours. Thus, in the last week of August 2008, the SAI devotees from Puerto Rico arrived at Santo Domingo in the Dominican Republic, carrying all the relief material. But to their surprise, they were informed that the government officials in Haiti would not let them proceed because some paperwork still needed official seals of the government, and this could take weeks.
To make matters even more difficult, the government officials at the customs in San Domingo were not ready to let them even unload the shipment in the Dominican Republic while waiting for the permission from Haiti. It seemed like the SAI volunteers would just have to return back to Puerto Rico with all their humanitarian aid. No amount of pleading or reasoning with the officials seemed to have any effect on them. Then, just when the obstacles seemed insurmountable, one of the customs officials allowed them to deposit the goods at the local SAI center while waiting for the permissions from Haiti. For the devotees, it was SAI who had come to their rescue.
Even though the two nations of Haiti and Dominican Republic share the same island, they have not enjoyed good relations for more than 200 years. However, as Swami asserts, and I quote, "A wave of service, if it sweeps over the land, catching everyone in its enthusiasm, it will be able to wipe off the mounds of hatred, malice, and greed that infest the world," unquote. No surprise then that the SAI organization in Haiti and in Santo Domingo has emerged as the only diplomatic light in this bleak situation, for they have held joint SAI spiritual retreats in Santo Domingo, where the pervading spirit of SAI love erases all geographic or political differences, and the SAI devotees from Haiti as well as Santo Domingo always stand by each other in times of need.
Since the government officials were dragging their feet, the SAI devotees deposited the supplies at the local SAI center and returned home to Puerto Rico. They felt disappointed that they had brought the service offering only halfway. From there, the SAI devotees from the Dominican Republic took over. They decided to add to the provisions already donated
and kept collecting more and more relief material until there were 48 large cartons. Everything was put in the inventory and was ready for distribution. But still, there was no permission from High Commissioner Krishna.
Then, as foreseen by the SAI service coordinator of Puerto Rico, in the second week of September, Hurricane Gustav rode through the Caribbean, hitting many islands, and the worst damage was done in Haiti and Cuba. Winds were gushing at 150 miles per hour, and torrents of rain flooded everything. When the government of Haiti saw that they needed to help their people, the paperwork that had taken so long to see was ready in a day. But now there was another problem. The road leading to the border had been washed out and no transportation was moving. There was no way to take all the ready relief material to the needy.
The SAI devotees in Santo Domingo were frantically looking for a truck to take the load of aid to Port-au-Prince. But all the transport companies wanted a fortune. Finally, through friends, a bus company was contacted. They offered to transport the goods, but for $2,500. The SAI devotees then explained that this was humanitarian aid and no one was making any money. They requested the bus company for a discount. A call was made to the owners of the company and they asked who was shipping the goods. When they heard it was the Satya Sai service organization, they said they would only charge for gasoline, which would cost a mere $185 instead of the original $2,500. Again, it was His grace, and miraculously, by the next day, the floods had also receded enough to let the bus loaded with supplies get through.
Finally, when the 48 cartons reached Port-au-Prince, the SAI devotees at the local SAI center in Haiti were ready. They didn't just put everything in plastic bags and hand it out to the needy people. They wanted even the packing of the items to reflect the love and care with which they had been collected and were being distributed. Baba has defined selfless service as love made manifest. So, the SAI volunteers gift wrapped all the items, making a total of 110 beautiful gift bags with essential food items and clothes for families who had lost everything. When these were distributed, the recipients had tears in their eyes because someone cared enough to have come to their rescue in their darkest moments, respecting their dignity. Who else but the compassionate SAI could have arranged for everything so smoothly and so timely in less than a week after the hurricane had struck?
The same storm, Hurricane Gustav, which hit Haiti, hit Cuba as well. The damage to life and property there too was as serious as in Haiti. The SAI organization coordinator from Cuba informed that the government had to use all of the available food to help residents in the flood-ravaged area, especially Alcázar province, leaving very little food for the people in the capital city of La Habana. Because this disaster hit shortly before Swami's birthday, the SAI organization in La Habana decided it would be impossible to celebrate his birthday that year. However, when this news spread to Venezuela, a very generous SAI devotee from there immediately sent 15,000 cases of food items to the government of Cuba for distribution. He did not send them to the SAI organization there because in Cuba, the civilians are not allowed to participate in any distribution of this nature, as it is the government which does everything. He also sent $2,000 for the Sai Center for helping those devotees who were in difficulties and for celebrating Swami's birthday.
The money was just in time for helping many who did not have food in their homes, and a grand birthday celebration was held with over 300 devotees participating in it. The Sevadal volunteers were trying to keep things in order for the bhajans and cake distribution in a house which could normally accommodate only 50 persons. How it accommodated over 300 people that day is still a mystery. Sai videos were shown, and also present on that occasion was a most honored guest, Her Excellency, the Indian Ambassador to Cuba.
Whenever there is a pure intention and sincere desire to engage in selfless service, Sai is always there. And this story, which unfolded thousands of miles away from Prashanthi Nilayam, only reinforces this fact. With Sai everywhere, Sai devotees have no fear. It is only loving and sharing, selflessly, that gives them a real spiritual high. For what better honor can they seek than to be serving in the name of Sai?
You just heard another episode of Serving in the Name of Sai, stories of Sai Seva from across India and around the world. You can read up on today's feature and see pictures of this and other Sai Seva stories by checking out the Sai Seva section on our website, radiosai.org. Thank you for joining us today, and please do send us your feedback on this program. As always, you can reach us at listener@radiosai.org. Thank you, Sai Ram.
Tune in to Sai.
Spend the day with Sai. From 6 a.m. to 9:30 p.m.
on Radio Sai's Thursday Live.
Radio Sai Thursday Live.
धन सबनी
हाजी
एक समान
हाजी
सिख ईसाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंदू मुसलमान
बोलिए बोलिए जी बुद्ध राष्ट्र महावीर नाम
बोलिए बोलिए जी बुद्ध राष्ट्र महावीर नाम सिख ईसाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंदू मुसलमान
प्रेम धर्म ही एक देखो
सिख ईसाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंदू मुसलमान साईं के दरबार में साईं के दरबार
जाती है वो मानवता की जाति हमारी समता समग्रता समैक्यता सौभ्रातृत्व
पात का
जी
धर्म ना ऊंच नीच का
जी
वेद ना जात पात का
जी
धर्म ना ऊंच नीच का
जी
तेरे दर पे आए वो सभी एक हो जाए
वो सभी एक हो जाए वो सभी एक हो जाए
न जात पात का न भेद यहाँ न ऊंच नीच का न धर्म यहाँ न जात पात का न भेद यहाँ न ऊंच नीच का न धर्म यहाँ
आशा हमारी एक हृदय की
मनोयान मनो कर देखो जन मनोयान मनो कर देखो जन
मनोयान मनो कर देखो जन मनोयान मनो कर देखो जन साई के दरबार में
जी हाँ जी हाँ जी
साई के दरबार
में निरगर निर निध मद भग भग निरगर मबद निध मबदनी साई के
परंपरा पुरानी बदल गई है आज
काली घटा छाई है कलयुग की आज
काली घटा छाई है
कलयुग
की आज काली घटा छाई है कलयुग की आज काली घटा छाई है कलयुग की
आज मगर इस घन घोर अंधेरे में ये किधर से उठी है
मानो यारो मानो आकर देखो जानो
मानो यारो मानो आकर देखो जानो साई के दरबार में आओ जी आओ सुन लो साई के दरबार में आओ जी आओ सुन लो साई के दरबार में आओ जी आओ सुन लो साई के दरबार में
नमस्कार
योगा सुखियो भवन्तु ओ हो
तेरे बाद।